आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का सिलसिला जारी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई जिलों में जारी हुए स्कूल बंद करने के आदेश। प्रदेश के सभी जिलों में कल उत्साह के साथ मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इको टूरिज्म का हब बन गया है उत्तर प्रदेश। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने में लखनऊ पहले स्थान पर, टॉप फाइव में हैं वाराणसी, कानपुर आगरा और कानपुर नगर। और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए 107 रन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव और बारिश की निरंतरता के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ, गोरखपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में घने बादल छाए हुए हैं और कल देर रात से गरज चमक के साथ तेज हवा के बीच वर्षा का सिलसिला जारी है। वर्षा के कारण प्रदेश के कई जिलों से दुर्घटनाओं की खबर भी मिल रही है। फतेहपुर जिले में कल बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल से सटे जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा प्रदेश के बीच के हिस्सों में मध्यम बारिश के आसार हैं। कई जिलों में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी ने इंटर तक के सभी स्कूल आज बंद कर दिए हैं। अयोध्या में भी इंटर तक के स्कूलों को आज बंद रखने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया है। जौनपुर और कुशीनगर जिले में कक्षा 8 तक के स्कूलों को आज बंद रखने का निर्देश जारी हुआ है। प्रदेश भर में कल विश्व पर्यटन दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न जिलों में इस अवसर पर तरह तरह के आयोजन किए गए और पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
डबल इंजन की सरकार पर्यटकों की रुचि और उनकी सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज यूपी अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। 2025 मकर संक्रांति से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 दुनिया भर के, हमारा अनुमान है, 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश किस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को पर्यटकों के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे।
पर्यटन दिवस के अवसर पर झांसी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ताजनगरी आगरा में पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट स्वामियों ने विचार गोष्ठी के साथ ही कई कार्यक्रमों के आयोजन किए। वहीं काशी में वाराणसी टूरिज्म गिल्ड की ओर से पर्यटन पदयात्रा का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रदेश भर में 155 घंटे का नॉन स्टॉप मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। इसी क्रम में मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता गोष्ठी में लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई। वहीं शामली की रहने वाली दिव्यांग युवा समाजसेवी पायल ने सरकार की इस पहल को समाज और लोगों के लिए जरूरी बताया है।
साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है कि प्लास्टिक बंद का आह्वान कर कई कड़े कानून बनाए गए हैं। दरअसल प्लास्टिक द्वारा हमारे जन जीवन, हमारे वातावरण, पशु पक्षी और हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हम सभी को पेड़ पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमारा वातावरण स्वस्थ नहीं रह पाएगा, स्वच्छ नहीं रह पाएगा।
फतेहपुर में इस अभियान के तहत स्वच्छता हीरो कार्यक्रम चलाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के गांवों में भी इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक लाभार्थी मोहसिन ने बताया कि
मेरे गांव में काफी बदलाव देखा जा रहा है। ऐसा है कि हर घर शौचालय दिया गया है जहां नहीं था, और कचरा पात्र बने हैं, प्लास्टिक बैग बने हैं जगह जगह पर, चौकपीट बने हैं जो रोडों में पानी बहता था, गंदगी का में जो लोग पहले बीमार होते थे उसमें बहुत कमी आई है। बीमार पहले रहते थे, अब कोई बीमार नहीं रहता, और साफ सफाई का काफी ध्यान दिया जाता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने में लखनऊ प्रदेश में पहले स्थान पर है। इस वर्ष 15 फरवरी को शुरू ही इस योजना के तहत लखनऊ में सर्वाधिक रूफटॉप पैनल लगाए गए हैं। वहीं वाराणसी, कानपुर, आगरा और कानपुर नगर टॉप 5 में हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान बताया कि प्रदेश में लखनऊ जनपद में सर्वाधिक 11,435 सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस योजना के तहत अब तक 4,088 सोलर पैनल इंस्टॉल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे दिन कल वैश्विक बाजार में नेविगेशन, भारतीय निर्यातक के लिए संभावित चुनौतियों और रणनीतियों पर उद्योग निर्यात संगठनों के महासंघ द्वारा सत्र का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी शामिल हुए। मंकीपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंकीपॉक्स बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां आयोजित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से रणनीतिक निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया है। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक बेचन राम और जीत सिंह खरवार को आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आयोग में 16 सदस्य भी बनाए गए हैं जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलकर 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले बाघ को गोरखपुर प्राणी उद्यान भेज दिया गया है। बाघ की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय निगरानी टीम बनाई गई है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल ने प्राविधिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 899 उपाधियां प्रदान की। इस दौरान 48 मेडल मेधावी विद्यार्थियों को दिए गए। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल से भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ। मैच के पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कानपुर में हल्की से भारी बारिश के आसार हैं, जिसका असर खेल पर पड़ सकता है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हुए भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. निधिपति सिंघाना ने घंटी बजाकर किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना। खराब मौसम के चलते पहले दिन केवल 35 ओवर का ही खेल हो सका है, जिसमें बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बनाए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 23 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। हज यात्रा के लिए आवेदक के पास अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता 15 जनवरी 2026 तक होना जरूरी है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का सिलसिला जारी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, कई जिलों में जारी हुए स्कूल बंद करने के आदेश। प्रदेश के सभी जिलों में कल उत्साह के साथ मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इको टूरिज्म का हब बन गया है उत्तर प्रदेश। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने में लखनऊ पहले स्थान पर, टॉप 5 में है वाराणसी, कानपुर, आगरा और कानपुर नगर। और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए 107 रन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।